है बाबा के परियों, परियों का जीवन न्यारा। ज्ञान योग के पंख लगा कर घर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा के परियों, परियों का जीवन न्यारा। हम है बाबा के परियों, परियों का जीवन न्यारा। ज्ञान योग के पंख लगा कर घर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा के परियों, परियों का जीवन न्यारा।
क्रिश्चियन धर्म में चौथी शताब्दी एक संत महिला का वर्णन, जिसका उस धर्म में बहुत गायन है। वो लगभग 16 वर्ष की थी और उसकी शादी होने वाली थी किसी से। एक दिन वो बालकनी में खड़ी होती है और सड़क पर देख रही होती है। वहां से एक संत सेंट पॉल नामक एक ईसाई, जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर, भगवान के गुणगान गाता हुआ जा रहा है और वो देखती है उसको। वो कहता है वो जो पवित्र है भगवान के निकट है, कि दैट इज चेस्ट इज क्लोज टू द गॉड। और ये कन्या जिसका नाम होता है थेकला, वो कन्या उस युवक को, उस संत को देखती है और उसे अजीब सा आकर्षण होता है उस गीत में। वो संत गीत गा रहा है वो जो पवित्र है, वो जो चेस्ट है, वो जो सेलिब्रेट है, वो भगवान के नजदीक है। और वो देखती रहती है उसको। पहला दिन अभी उसकी शादी होने वाली है किसी से। दूसरा दिन फिर देखती है और देखते देखते ही जैसे अंदर कुछ हो जाता है। उसके वो शब्द, उसके वो गीत उसको ऐसे टच करते हैं अंदर से कि उसे लगता है ये मैं क्या कर रही हूं, मेरा जीवन भगवान के लिए, ना ही किसी देहधारी के लिए। तीसरा दिन देख रही है फिर से वही गीत गाते हुए एक तारा भी है, वैसा ही संत वहां से जा रहा है और वो उसे देखती है फिर से। और बस तीसरे दिन ही संकल्प कर लेती है कि मेरा जीवन केवल और केवल उस ईश्वर के लिए और किसी को मैं ये जीवन दे ही नहीं सकती। उसकी माँ को पता चलता है, माँ बहुत नाराज होती है। जो होने वाला पति है उसको पता चलता है कि ये अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो भी बहुत नाराज होता है। उसकी माँ और उसका होने वाला पति दोनों उसको बहुत समझाते, परंतु अब समझाने की अवस्था पार कर चुकी है। हृदय में जैसे क्रांति हुई है, परमात्मा प्रेम का ऐसा दीपक जल गया है कि अब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। जिसे प्रभु के पास जाना है उसे पवित्र होना होगा। गीत के भिन्न भिन्न वाक्य, लाइन, अंतरा बस उसके मन में, कानों में गूंजते रहते हैं कि मेरा जीवन पवित्रता के लिए, मेरा जीवन प्यूरिटी के लिए है, मेरा जीवन किसी भी शरीरधारी देहधारी के लिए नहीं। जब उसको बहुत समझाते हैं वो नहीं समझते, उसको डराया धमकाया जाता है, यहां तक कि मारा जाता है, पर वो फिर भी नहीं सुनती। और जब सारे प्रयत्न करने के बाद भी नहीं सुनती, तब उसका होने वाला पति वहां का जो राजा होता है उसको झूठी झूठी इसके बारे में बहुत सारी बातें बताते और उसे इतनी कड़ी सजा सुनाई जाती है जो आज तक किसी को नहीं सुनाई, ताकि वो एक उदाहरण बन जाए बाकी स्त्रियों के लिए कि ऐसा नहीं करना है। परंतु वो तो बस अब एक में उसकी लगन है, बस एक जीजस, उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं संसार। उसे सजा सुनाई जाती है कि जिंदा जला दिया जाए सभी के सामने, सारा गांव देखने के लिए लकड़े का तख्ता उसे बांध दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। बस वो चिल्लाती रहती है, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। उसका पति उसको कहता है अब भी मान जा, उसकी माँ कहती है अभी भी मान जा, वो कहती है मानने का तो कोई सवाल नहीं, जीवन उसका है, उसको दे दिया है बस। और आग लगाते जाते, और जैसे ही आग लगती है अचानक एक चुलबुला होता है, द फर्स्ट मिरेकल। अचानक से बारिश आने लगती है और आग बुझ जाती है, उसके बंधन छूट जाते हैं। और वो जो सेंट पॉल था जिसको देखकर इसमें परिवर्तन आया था, लोगों ने, उसके पति, होने वाले पति ने और मां ने उसकी भी शिकायत कर दी, उसको भी बहुत मारा गया, उसको भी उस शहर से निकाल दिया गया। उस समय ईसाई धर्म फैला नहीं था, शुरुआत थी, अभी तो उस पर अत्याचार हो रहे थे, जैसे जीसस क्राइस्ट पर अत्याचार हुए, उसके जितने शिष्य थे उन सबको भी सूली पर लटका दिया गया। और जहां जहां वो फैलते थे विरोध होता था, हंसते थे लोग, अत्याचार यातनाएं देते थे उनको। ये वो शुरुआत का काल था उस धर्म का। थेकला बड़ी मुश्किल से वहां से छूट जाती है, उसे वो सेंट पॉल भेजता है शहर के बाहर, और दोनों दूसरे शहर में जाते हैं। पर उसके पति को ये भी पता चल जाता है, होने वाले पति को, कि ये वहां पहुंच गई है, वो वहां भी पहुंच जाता है। वहां पर भी बहुत उसके साथ अत्याचार करते, जो कि बहुत दूर है वो जगह। फिर से उसकी बहुत सारी झूठी शिकायतें की जाती है, और फिर से उसके खिलाफ अदालत, और फिर से उस थेकला को दूसरी सजा सुनाई जाती है। और ये सजा बहुत ही खतरनाक है, एक अखाड़े में उसे फेंक दिया जाता है सारे गांव वाले देखने के लिए, और उस अखाड़े में तीन भूखे शेर, ताकि बाहर उस देश के लोग भी सीख ले कि ऐसा कुछ करने से ये परिणाम होता है। क्योंकि उस समय पवित्रता, ब्रह्मचर्य, चास्टिटी ये सब कहीं था ही नहीं, ये उस शुरुआत के दौर की कहानी। और फिर से वो थेकला अपने आप को समर्पित करती थी, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, घुटनों के बल गिरती है, और उधर से तीन भूखे शेर, और वो सारा गांव देखने के लिए, वहां पानी रखा होता है, ईसाई धर्म में अनॉइंटमेंट करते हैं, बपतिस्मा, वो उसी पानी को लेती है और कहती है कि आज मेरा पुनर्जन्म, और दिखाया है उन तीन शेरों में से एक शेरनी होती है, वो शेरनी उसके बीच में आ जाती है और उन दो शेरों को आने ही नहीं देती, सेकंड में आकर और उसकी फिर से रक्षा हो जाती है। अचानक तूफान आता है, अफरा तफरी सब इधर उधर हो जाते हैं और वो थेकला वहीं से वहां से भी निकल पड़ती है और फिर दिखाया है बहुत दूर वो चली जाती है और एक गुफा में अपनी सारी जिंदगी बिताती है। वो जीती है लगभग 80-90 वर्ष तक। वो गुफा आज भी है तुर्की में। अब एक तीसरा और अंतिम पेपर। इतना लंबा समय प्रभु भक्ति करते करते पवित्रता में चलते चलते उसमें अलौकिक शक्तियां निर्माण होती है, उसके हाथों में हीलिंग पावर आ जाती है। जो लोग उसके पास आने लगते हैं वो सब बीमार लोग ठीक होने लगते हैं, वो जैसे संत बन जाते हैं, सेंट थेकला। और वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो उसके पास जाने लगते, पर वहां के जो चिकित्सक होते फिजिशियंस डॉक्टर्स उनको बहुत ईर्ष्या होती है कि ऐसा इसमें है क्या जो सब लोग हमको छोड़कर इसके पास जाते और वहां से ठीक होके आते, क्या है इसके पास। फिर उनको पता चलता है इसकी प्यूरिटी ही इसकी इसका राज है। वो सारे बुरे लोग चिकित्सक और दूसरे हकीम वैद तीन युवकों को तैयार करते हैं और उसके पास जाने को कहते हैं उसकी आशील भंग करने के लिए, क्योंकि हीलिंग पावर जो आई है उसका कारण प्यूरिटी। तब तक तो वो बूढ़ी हो चुकी है, 80 वर्ष 90-80 वर्ष, फिर भी दिखाया है ये तीन युवक आ रहे हैं। वो गुफा, वो यहां, ये तीन सामने से आ रहे, वो पीछे पीछे हटती जाती। और दिखाया गया, शायद काल्पनिक होगा, कि गुफा में वो समा जाती है शरीर सहित। कितना सत्य है पता नहीं, पर ऐसी कहानियां हैं। जैसे भारत में तीन लोगों के लिए कहा गया है उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, शरीर सहित विलीन हो गए। कौन कौन? एक तो मीरा, दूसरा चैतन्य महाप्रभु और तीसरा महाराष्ट्र के संत तुकाराम। केवल इन तीन के लिए ही कहा जाता है, पर यह सत्य नहीं हो सकता, ये दूसरी बात है। पर कहानियां, कहने का भाव, वो जो थेकला थी, उस कहानी को कहा जाता है द टेल ऑफ सेंट थेकला एंड सेंट पॉल। संत की पदवी प्राप्त हुई उसे उस स्थल में, और कारण था एक ही, उसका अखंड ब्रह्मचर्य, उसकी अनटच्ड प्यूरिटी, ऐसा प्यार प्यूरिटी के लिए कि अपनी मां सब कुछ छोड़ दिया उसने, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्रभु प्रेम। जैसे भारत में मीरा दीवानी, वैसे ये भी दिखाई एक दूसरी ऐसी ही संत है, ललेश्वरी, सुना होगा नाम, कश्मीर की संत महिला। उसका पति, उसकी माँ, उसकी सास उसको इतना तंग करते थे, और जब वो 23 वर्ष की थी घर छोड़ दिया, सड़कों पर अकेली घूमती फिरती थी, शिव की पुजारी थी। वैसे ही सूफी संत राबिया, ये सारी वो संत महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सहन किया, इतना सहन किया कि कोई दूसरा होता तो टूट कर गिर जाता, और इनके अंदर एक ही शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति, परमात्मा प्रेम की शक्ति। तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीवन है कुमारी जीवन या कुमार जीवन। इस जीवन में जो कुछ किया जा सकता है वो हम करें, जितना कुछ कर सकते, जितना आगे बढ़ा जा सकता है उतना आगे बढ़ना है। कोई बंधन नहीं, कोई बांध नहीं सकता, बकरी नहीं है, गाय नहीं है, कोई बांध कर ले जाए, अपने शिव शक्ति स्वरूप में निरंतर स्थित रहना है। और ये जो संसार है, और संसार की जो चमक दमक है वो अल्पकाल की है, थोड़े समय है फिर नहीं। जैसे माया ने ही स्वर्ग रचा है यहां पर, माया के इस संसार में, माया के इस स्वर्ग में अगर रहना है तो अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा अंदर, ताकि कोई आकर्षण खींचे नहीं। बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारी माया है, भिन्न भिन्न प्रकार की माया है ऐसी इस रावण के राज्य में, इस कलयुग की माया की। ऐसी सात बातें हम देखेंगे, ये वही सात बातें हैं जिस कारण से सीता अशोक वाटिका से शोक वाटिका में पहुंचे। अगर इस माया के राज्य में रहना है तो इन सातों बातों से बचना होगा। उसमें से एक अगर आ गई तो एक के पीछे सारी आ जाएगी और हमको खींच लेगी संसार में। और क्या है संसार में, जाकर संसार की स्त्रियां, गृहस्थी महिला, उनसे पूछो क्या जीवन है उनका। शक्तिहीन, अधीन है। पत्नियां खत कैसे लिखती थी अपने पतियों को, मेरे पति परमेश्वर और नीचे आपके चरणों की दासी। अभी लिखती नहीं है, परंतु वो बंधन तो जरूर है, बंधन में जरूर है। इसलिए इस कुमारी जीवन में ये संकल्प कभी ना आए कि कोई सहारा मिल जाए, कोई आधार मिल जाए, कोई कंधा मिल जाए जिसमें सिर रख कर रो, कोई यहां पर हाथ रख दे तो बड़ा अच्छा लगता। किसी का सहारा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले हम इसकी लिस्ट निकालेंगे क्या नहीं चाहिए, और इसके लिए अपने आप को दृढ़ कर देंगे अंदर से कि मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहला केयर, कोई मेरी केयर करे, नहीं चाहिए मुझे किसी की केयर। भगवान केयर करने बैठा हुआ है, क्यों देहधारी की केयर। मुझे पूछे तुम कैसी हो, क्या हो, कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए किसी की केयर। जो केयर करने आएगा, इतना आसान नहीं है। पुरुष प्रेम देता है, रिटर्न में उसको उसके कामुक वासनाओं की पूर्ति की चाह अंदर छिपी रहती है। मैन गिव्स लव फॉर लस्ट, उसके भी स्वभाव को समझना, क्यों दोस्ती करनी है उसको, हमारी मदद करनी है इसलिए नहीं, कुछ और है, छिपा है मन में। इसके लिए किसी की भी केयर नहीं चाहिए। मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले कोई परवाह नहीं, भगवान केयर करने बैठा है। दूसरा प्रेज, स्तुति, हमने सेवा की, बहन हमारी स्तुति करे, कोई हमारी स्तुति करे। क्या हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रशंसा मिले। जो कर्म हम करेंगे, जो सेवाएं हम करेंगे, अपने आप वो जमा हो रही ऊपर। इस संसार में किसी की भी स्तुति हमको नहीं चाहिए, करते हैं तो करने दो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि संसार वाले आज स्तुति करेंगे कल निंदा करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। और हमारा जीवन किसी के स्तुति के अधीन ना हो, महिमा करते हैं, अनासक्त हो जाना, न्यूट्रल हो जाना महिमा सुनते ही। क्योंकि अगर वो महिमा किसी भाई से और किसी पुरुष से आए तो उसके तरफ स्वाभाविक आकर्षण होता है, अपना सा लगने लगता है। इस संसार में एक शिव बाबा के अलावा हमारा सदा कोई भी नहीं, इस बात को पक्का करके रखना है, ताकि कहीं पर भी झुकाव ना हो, लगाव ना हो, आकर्षण ना हो। इस कुमारी जीवन में बस ये एक ही माया है, इससे बच गए तो बाकी जो भी माया है जो आएगी उससे लड़ने के लिए हमारे पास अपने आप शक्ति रहे, वो बहुत छोटी सी चीज है। स्तुति, अगला अटेंशन, एक बताया था कि अटेंशन अर्थात विशेष ध्यान कोई दे, हम बीमार है, कोई पूछ नहीं रहा है क्यों, कुछ चाहिए क्या, खाना खाया क्या, हमारे तरफ विशेष अटेंशन दे, हमारे बड़े क्यों देंगे, किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है, भगवान अटेंशन रखेगा, भगवान अटेंशन दे रहा है, हमें किसी की अटेंशन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में जितनी अधिक कामनाएं उतना अधिक दुख, जितनी अधिक एक्सपेक्टेशन बड़ों से, साथियों से, छोटों से, उतना अधिक दुख, दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, कोई दे तो बहुत अच्छा, ना दे कोई परवाह नहीं। अपनी डायरी के ऊपर एक वाक्य लिख के रखना है, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। अगला, रिस्पेक्ट, कोई हमारा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, जब ज्यादा कामना होगी, और जब नहीं किया तो दुख होगा, हमारा जरा भी सम्मान नहीं किया, बाकियों का सम्मान किया, हमारा सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं चाहिए किसी से। भगवान सम्मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, क्यों किसी का सम्मान ले रहा है। अगला, वस्तु, एक बात हमेशा याद रखनी है, वस्तुएं आती है और जाती है, वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वस्तुएं आएगी, वस्तुएं चली जाएंगी, वस्तु के लिए व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। किसी ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, हमने उसे बहुत डांटा, वो व्यक्ति चला जाएगा, वस्तु तो आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा। जीवन में वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं देना है। विदेश की एक बहन ने अनुभव सुनाया था, सेवा केंद्र में कोई सेवा थी, धन था भाई बहनों का दिया हुआ पैसे किसी सेवा के लिए, वो किसी छोटी बहन को उसने दिया संभालने के लिए, और छोटी बहन ने आके फिर बताया कि वो गुम हो गया। उसको इतना डांटा और दूसरे दिन वो मिल गया पैसे। इस बहन ने अनुभव सुना, इस घटना को आज 30 साल हो गए, हम दोनों अब भी सेवा साथ साथ करते, पर जो क्रैक पड़ी थी तब वो आज भी है, आज भी वो जो क्रैक संबंधों में आई थी वो गई नहीं है, वो जो कड़वाहट एक्सचेंज हुई थी बाद में सेवाएं की उसने मेरी, मैंने उसकी, पर जो वो बोल दिया था वो आज भी वैसी ही है क्रैक। इसलिए वस्तु नुकसान होगा, वस्तुएं जाएगी, परंतु व्यक्ति नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और किसी से कोई वस्तु नहीं चाहिए, किसी के पास कुछ अच्छा दिखा मांगना नहीं है किसी से, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख, किसी से भी कोई भी वस्तु नहीं मांगे। ये भी मनुष्य का स्वभाव है, कुछ अच्छा दिखा ये कहाँ का है, ये कहाँ से लिया, एक्स्ट्रा है क्या, तुरंत चालू होता है। वो खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, वो जूता हो, वो चप्पल हो, वो मोबाइल हो, वो कुछ भी हो, और जितना हो सके, जो कुमारी है अभी बाहर घर पे रहती है, हो सके तो अपने ही पैरों पर खड़े रहना, यहां तक कि माँ बाप से भी कुछ भीख ना मांगना, वो भी एक संस्कार और आदत पड़ जाती है मांगने का, मांगते रहते जब देखो तब मांगते रहते, जिसको देखो उसको मांगते रहते, क्यों मांगना है किसी से, बाबा अपने आप देगा, जो चाहिए वो देगा, अगर वो मांग, अगर वो भावना बहुत शुभ है। एक विदेशी भाई ने अभी अभी अनुभव सुनाया था, डबल फॉरेनर, मार्केट में गया माउंट में घूमने के लिए, जिलेबी देखी वहां पर, तो कहा जिलेबी देखकर, बाबा मुझे ये जिलेबी चाहिए, पर बाहर की तो खा नहीं सकता, अब करो कुछ, वापस लौट कर आया, जिलेबी देखकर वापस लौट कर आया, वो गुरुवार था और भोग में उस दिन जिलेबी बनी थी। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, वो कहते हैं आप हमको कहते हो जाओ मेरा संदेश, तो अरे कैसे जाओ, हमको तो बोलना ही नहीं आता, हमने कभी माइक ही नहीं पकड़ा, माइक तो नहीं, हमने कभी बोला नहीं। जीसस उनसे कहता है जाओ, जाकर तुम बस खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर, क्या बोलना है वो तुम्हें दिया जाएगा उस समय। ऐसा अपने आप को समर्पित करते जो चाहिए, क्या उसे नहीं पता हमें क्या चाहिए। हमारे हर संवाद में, हर वार्तालाप में बाबा भाग लेता है। ये नहीं समझना ये एक तरफा चल रहा है, उसके बाद में सहानुभूति, किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए। हम दुखी है, उदास है, कोई आए और पूछे, सहानुभूति दिखाए, सांत्वना दे, क्यों देगा। हर व्यक्ति अपने ही दुखों में डूबा है, कौन किसको सांत्वना दे, अपने ब्राह्मण जीवन का बोझ जैसे लेके चल रहा है अदृश्य रूप से। रहनी चाहिए खुशी पर है दुख, उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी, खातरी, हम कहीं जाए और हमें वो लोग खातरी करेंगे, जरूरत जरूरी नहीं है, शायद हम कहीं गए और पूछे भी ना, बाहर के बाहर ही भेज दे। उसके बाद में एंटरटेनमेंट, कोई हमारा मनोरंजन करे इसकी कोई कामना नहीं, कोई हमें बहलाए, कोई हमें मनाए, हम रूठ गए, इच्छा होती है कि कोई दूसरा सामने वाला आके मनाए। और आजकल रूठने रूसने का खेल तो मोबाइल पर चलता है, एक मैसेज इधर और एक मैसेज उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, नहीं चाहिए किसी को मनाना, और ना ही टीवी पर दिखाने वाला, दिखाए जाने वाला चीप मनोरंजन, चीप कॉमेडी शोज जो टाइम को वेस्ट कर देते, खा देते। यहां समय है पुरुषार्थ का, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, उसके बाद में प्रेम, लव, हर एक की इच्छा होती है, सबसे गहरी प्यास मनुष्य की है प्रेम मुझे करे दूसरे, और जितना हम सोचते हैं दूसरे मुझे प्रेम करे उतना वो कम करते हैं, और जिस दिन कम करेंगे उस दिन दुख होता है। माया के इस स्वर्ग में प्रेम के भिखारी है सब लोग, प्रेम 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 मांगते रहते, मिलता किसको ही नहीं, क्योंकि है भी तो नहीं किसी का, कौन देगा प्रेम। उसके बाद में पावर, शक्ति, भाई जी हमारे को मुझे सकाश देना मधुबन से, हम लोगों की स्थिति थोड़ी डगमग है, वहां से सकाश भेजना, क्यों चाहिए सकाश की भीख। हमारे घर में विघ्न चालू है, इधर विघ्न चालू है, थोड़ी उधर से सकाश भेज, जैसे सकाश एजेंसी खोल रखी है उधर किसी, वहां से भेजो सकाश। हमारा घर बन रहा है, जगह नहीं मिल रही है, जगह मिल गई अभी वो चल रहा है, सकाश कहते रहते, कुछ भी सकाश मांगते रहते। एक माता का फोन आया था, आज मेरे बेटी को देखने, ज्ञान में चलता है सारा परिवार, लड़का आ रहा है, भाई जी प्लीज वहां से सकाश देना, रिश्ता पक्का हो जाए, अब यही बाकी था। हम तो तोड़ने वाले, किसको बोल रहे, इधर से तोड़ा उधर से लाठी, यही तो काम है, किसी से कुछ शक्ति नहीं मांगनी, खुद शक्तिहीन कमजोर हो गए, जरूर किसी श्रीमत का उल्लंघन किया, इसीलिए कमजोरी का अनुभव हो रहा है, और मन की कमजोरी फिर शरीर की कमजोरी आएगी, शरीर में थकान, शरीर में कमजोरी, क्यों, शायद मन ही कमजोर हुआ है, इसलिए तो शरीर में भी कमजोरी लग रही है, वो तो प्रतिबिंब मात्र है मन की कमजोरी का शरीर, इसलिए शरीर वीक महसूस होता है। थोड़ी सी सेवा करो थकान, क्योंकि अंदर उमंग ही नहीं, मन ही कमजोर पड़ गया। किसी की सकाश नहीं चाहिए, हम सबको सकाश देंगे, हमें देवी बनकर सारे विश्व को सकाश देंगे। उसके बाद में शांति और सुख, किसी से शांति मांगनी नहीं, मैं आज बहुत अशांत हूं क्या करूं, क्यों ऐसे संत हो पाते? एक कुमारी आई थी हमारे पास, कहने लगी हम सेवा केंद्र में रहते पर सेवा कर कोर्स कराने से डर लगता है, इतने समय से कोर्स करा रहे, ऐसे नहीं कि अभी से करा रहे, बचपन से ही ज्ञान है। वो कहती है मैं खुद ही अशांत हूं, लोगों को क्या सुनाऊ शांत हो जाओ, कैसे कोर्स कराऊं, लोगों को बताऊं ये सुख शांति का मार्ग, और मैं खुद यहां रहते हुए खुद अशांत हूं। अशांत है जरूर, कुछ तो कारण है, बड़ा सूक्ष्म कारण होगा अशांति का। सारा ज्ञान पता रहने के बाद में भी अशांति, बेचैनी, कोई लक्ष्य नहीं है, बस बह रहे हैं, दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। उसके बाद में अगला अंडरस्टैंडिंग, दूसरे मुझे समझे। तुमको पता नहीं है मैं जब चली जाऊंगी ना तब तुमको समझ में आएगा मैं कौन थी, अभी तुम लोगों को मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैं जब जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम। ऐसा आता है ना, अंडरस्टैंड ही नहीं करते, कोई समझते ही नहीं, पता नहीं कैसे लोग। ये भी तो एक भीख हो गई कि दूसरे मुझे समझे, क्यों समझेंगे? हम तो कहेंगे मैं जब चली जाऊंगी ना तब समझेंगे, वो कहेगा आज ही चली जाए और दुख होगा फिर। अंडरस्टैंडिंग, हमें दूसरों को समझना है, ये अपेक्षा नहीं करनी है कि दूसरे मुझे समझे, बड़े मुझे समझे, साथी मुझे समझे, छोटे मुझे समझे। सीक टू अंडरस्टैंड रादर देन टू बी अंडरस्टूड, उनकी क्या मनोदशा है उसको समझना। और हमें तो शायद भगवान ने समझ लिया ना, और किसके सामने जस्टिफाई अपने आप को करे, किसके सामने प्रूव करे कि मेरी गलती नहीं थी, गलती उसकी थी, मानेगा कोई? हर मुजरिम तो कोर्ट में यही कहता है मैं बेगुनाह हूं, कौन कहता है मैंने पाप किया है, गुनाह किया, कोई भी नहीं कहता। हर एक अपने आप को जस्टिफाई करता है और क्लैरिफाई करता है, क्लैरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण, ये ऐसा है, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। वास्तव में अगर वो हमारा अपना है और उसने मुझे वास्तव में समझा है तो उसके सामने कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। जब वो आरोप लगा रहा है इसका अर्थ तो उसका लक्ष्य ही है टारगेट करना, और फिर सामने वाले को मजा भी तो आता है, सामने वाला जस्टिफाई कर रहा है, अच्छा लगता है मजा देखने में। इसके लिए क्यों जस्टिफाई करना है? सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। हम अगर सत्य है और हमें अंदर से पता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, चुप, सत्य एक ना एक दिन प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा। उसके बाद में मदद, किसी की भी मदद नहीं चाहिए, मदद दे तो बहुत अच्छा पर भीख नहीं मांगेंगे कि हमारी मदद करो। उसके बाद में सहयोग, हम अकेले हैं हमारा सहयोग दो। यज्ञ के शुरुआत में सब लोग एक एक ही थे, किसी को किसी का सहयोग नहीं था, सहयोग था पर डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति कई सारे काम करता था, जो आज एक डिपार्टमेंट में 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग, उस समय एक ही व्यक्ति था। मधुबन में एक भाई है जो बड़ा डिपार्टमेंट अकेला ही देखता था, फिर दादी प्रकाश मणि ने कहा इनके साथ 2 लोग और भेज दो, तो उन्होंने क्या कहा पता है दादी को? दादी भाग्य बढ़ जाएगा, अभी मेरे अकेले का भाग्य, भाग्य बढ़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके लिए सहयोग मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले एकला चालू है। इस जीवन का मार्ग कौन सा है? वॉक अलोन। अंग्रेजी का एक फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर प्लेटोनिस, उसने लिखा है लाइफ इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये उड़ान है अकेले की, अकेले की ओर, परमात्मा अकेला है, हम भी अकेले, अकेले की, अकेले की ओर ये उड़ान, यहां कोई साथी नहीं। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, एक लाचारो है, एकांगी पगडंडी है जिसमें अकेले ही चल रहा है, एक परमात्मा के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं, जो है वो केवल ऊपर ऊपर से, एक दिन कुछ नहीं रहेंगे, सब मिट जाएंगे। कितने हुए? 14। इन 14 में से कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगेंगे। ये माया भी राज्य है, माया का स्वर्ग लगा पड़ा है, नहीं चाहिए। और हमने कहा था वो साथ केवल नाम गिनाएंगे, चिंतन आप बाद में करना, समय कम। सीता के चोरी होने के साथ कारण कौन से? सीता का अपहरण क्यों हुआ? लक्ष्मण रेखा सातवां कारण, सबसे पहला आकर्षण। किरण देखा और क्या हुआ? आकर्षण। दूसरा इच्छा, मुझे ये चाहिए। ये पर्स कहां से लाई, कहां मिलती है? ये जैकेट बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा है क्या? ये पर्दा तो बहुत अच्छा है, हमें भी चाहिए। तीसरा जिद, अब तक इच्छा थी, अभी जिद बन गई, अब चाहिए मतलब चाहिए। राम जी समझा रहे, लक्ष्मण जी समझा रहे, मानने को तैयार नहीं, चाहिए मतलब चाहिए, अब जिद बन गई है वो बात। चौथा मारीच की आवाज को राम की आवाज समझ, जो असुर था उसकी आवाज को राम की आवाज, लक्ष्मण लक्ष्मण, वो कहती है लक्ष्मण जाओ जाके देखो तुम्हारा भाई संकट में है, मनमत परमत श्रीमत समझ ली, आवाज रावण की है, मारी असुर की है, समझ रही है ये भगवान की आवाज, बाप कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, भटक रहा है, बुद्धि कंफ्यूजन है, ये करूं कि नहीं करूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। अगला पांचवा संशय, संशय हुआ कि वो राम वो परमात्मा वो भी कभी संकट में हो सकता है। विश्व भरण पालन करो जो ताकि नाम राम आसोई, जो राम विश्व का भरण भरण पोषण करने वाला है वो संकट में, भगवान पर ही निश्चय की कमी, पता नहीं बाबा मेरा क्या करेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, यहीं ठीक हूं घर में, वहां तो खतरा दिखता है, डर है। इमिली ब्रॉन्टो, इमिली डिकिंसन नाम की एक लेखिका है, उसने एक छोटी सी कविता लिखी है, उस कविता में एक छोटी सी लड़की है, वो जा रही है, उसको लोग डराते वहां नहीं जाना, वहां ना सांप है, वहां नहीं जाना, वहां ना भूत है, वहां मत जाना, वहां जंगल है, काला काला अंधेरा है। पर वो छोटी बच्ची जाते जाती है एंड शी फाइंड्स नथिंग बट एंजल्स, पर उसको फरिश्तों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलता, वो आगे बढ़ती जाती है। संशय, संशय होता है सीता, बाप पर संशय कि पता नहीं वो मेरा, उसे पता भी है कि नहीं मैं हूं या नहीं, मेरे अस्तित्व का उसको खबर भी है कि नहीं। अगला छठवा, रावण को न पहचान पाना, क्योंकि रावण कौन से वेश में आया? ब्राह्मण के वेश में आया, साधु के वेश में आया, वो तो तब, अभी उसने बहुत सारे हर दिन नए वेश बदलता है, अभी वो ही वेश में आ जाए तो पहचान लेगी सीता, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आता कि हाँ ये तो रावण, इसके लिए रावण तो बहुरूपी है, हर दिन नया नया रूप धारण करके होता है। और लास्ट लक्ष्मण रेखा पार, मर्यादाओं को तोड़ दिया, सात स्टेप्स है, माया के स्वर्ग में बच के रहना है तो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, नहीं तो गए। रावण तो खड़ा ही है पुष्पक विमान लेके, आ जाओ, हम भी कहेंगे बहुत दिनों से कहीं घूमे नहीं, थोड़ा घुमा के लाओ, थोड़ा सा घुमाएगा संसार में, स्वर्ग दिखाएगा यहां का, बहुत खुशी होगी, वाह वाह वाह, और फिर वहां पर बैठा देगा चुपचाप। फिर बैठो बंधन में, दुख में। अभी चरणों में गिरते हैं, फिर चरणों में गिरते रहो। एक बार उस नर्क में चले गए कि वापस आने का कोई मार्ग नहीं है। स्टैंप लग जाएगा अधर कुमारी। अधर अर्थात हाफ। हाफ वाला चाहिए कि फुल चाहिए? फुल कि हाफ? या कोई कहे माता जी ठीक लगता है? वैसे जगत माता हम है वो दूसरा। कुमारी अर्थात पवित्र, स्वतंत्र, निर्बंधन, किसी के सामने झुकने वाली। इसीलिए संसार के किसी बंधन में नहीं फंसना। उस दिन भी कहा था, एक शिकारी भटक गया जंगल में, 3 दिन तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है उसे, भटक रहा है, पशु पक्षी पंछी व्यक्ति कुछ नहीं, पागल हो गया है, जंगल में भटक रहा है भटक रहा है। और अचानक 3 दिन के बाद झाड़ के नीचे किसी मनुष्य को बैठा देखता है, इतनी खुशी होती है, मनुष्य दिखा कोई, भाग कर जाता है उसके पास। और वो जो बैठा है थे वो एक दूसरा शिकारी है, वो भी 3-4 दिनों से भटक रहा है, उसे भी कोई नहीं मिला। और दोनों मिलते हैं, इतनी खुशी होती है, दोनों मिलके गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, वाह वाह। पर रास्ता तो दोनों को भी नहीं पता। अब दोनों साथ साथ मिलके भटक रहे। पहले एक भिखारी था जो अकेला भीख मांगता था कटोरा, अभी उसको दूसरा भिखारी मिला, अब दोनों साथ साथ भीख मांगते हैं। और संसार इसी को विवाह ऐसा कहता है। एक भिखारी, फिर उसको दूसरा भिखारी मिलता है, ना इसके पास कुछ है ना उसके पास, फिर कटोरा लेके दिन जीवन भर मांगते रहते हैं बेचारे, ना वो कभी उसको तृप्त कर सकता है ना वो उसको तृप्त कर सकता है। भीख मांगने की ये प्रोसेस किस किस को करनी है? हाथ खड़ा करेंगे कुमारिया, छोटी कुमारिया, मिलता कुछ भी नहीं, जीवन बीत जाता है। 2 मार्ग है, लास्ट पॉइंट बता रहे, एक है भगवान का मार्ग, एक है संसार का मार्ग, दोनों में जलना है, दोनों ही मार्ग में जलना है। ऐसा नहीं कि अलौकिक मार्ग में अध्यात्म मार्ग में जलना नहीं है, यहां तो ज्यादा जलना है, उधर तो कम जलना है, वो गृहस्थी बच्चे पति उधर तो जलना है ही, पर इस अलौकिक मार्ग में भी जलना है। पर एक ही फर्क है, संसार के मार्ग में जल जल के जल जल के जल जल के राख अंत में खाक बन जाते, अलौकिक मार्ग में परमात्मा के मार्ग में जल जल के जल जल के एक दिन हीरा बन जाते जो विश्व को चमका। ऑप्शन ए ऑप्शन बी इधर जाना है हमारे हाथ में, पर जलना तो दोनों तरफ है। ये नहीं समझना कि इधर आ गए मतलब इधर अभी परीक्षाएं खत्म, यहां तो जलना चालू होता है। सेवा केंद्र में प्रवेश करना अर्थात ज्वाला भवन में प्रवेश, पर मार्क्स इधर ही ज्यादा है, ये ना भूलना, उधर मार्क्स कम है। तो 14+7 कितनी हुई? कितनी बात याद रखना, तो 21 कुल का उद्धार कर सकेगी।